ये उससे बचने ही मुश्किल हो गया। हमारे आदर शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह कच्चा मकान था सहारनपुर में, वो आज तक कच्चा मकान ही कहलाता है, कच्चा मकान था। सारी जिंदगी शेख के ऊपर ज़कात फर्ज नहीं हुई, सारी है ही पास के जो ज़कात फर्ज होती, जो आता था लग जाता था या फर्ज लेके लगाया जाता। और एक वो ऐसे कत्थई रंग का था कुर्ता होता था, एक लुंगी होती थी, एक लुंगी अपने आगे के जिस्म के हिस्से पर डाल लेते थे क्योंकि टांगों से माजूर हो गए थे, वही सरमाया था। और इज्जत का हाल क्या था, जब मक्की मस्जिद तशरीफ लाते तो अक्सर के बाद शेख को गोद में उठा के लाया जाता, तख्त पे बैठाते, मुसाफिर की लाइन लगती थी, बहुत लंबी लाइन होती थी। अब उस लाइन में वजीर साहब को भी लगे हुए देखा, फैक्ट्री और कारखानों के मालिकों को भी लगे हुए देखा, और गरीब और अमीर को भी लगे हुए देखा, जिससे शेख का मुसाफा हो जाता तो कहीं सर पे हाथ रखता, कहीं आंखों पे रखता, कहीं सीने पे रखता, शेख से मेरा मुसाफा हो गया। जिसके पल्ले कुछ नहीं था जमीन का, मकान भी कच्चा, पैसा भी पास, इज्जत इसको कहते, इसको कहते इज्जत किसी और रास्ते से मिलती है, इन रास्तों से नहीं मिलती जिसकी तलाश में आज हम जैसे दीनदार जो कहलाते हैं वो भी लगे, वो भी लगे। रूह मजबूत हो तो दुनिया में भी पुरसुकून आदमी, खाली जिस्म को बना के क्या करेगा आदमी। तो जिस्म के साथ साथ रूह को मजबूत बनाने की मेहनत की जाए, और वो आमाल से होती है। जिस्म की रजा खाना है, रूह की रजा अल्लाह की, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है। क्या किया जाए इसका, क्या किया? इसने मेरे गुज़िश्ता मजलिस में अर्ज किया था कि ये तीन तस्बीहात जो है ये तो कम अज कम है, कम अज कम इससे कम में तो काम चल ही नहीं सकता। इसके बाद फिर से आगे बढ़ा जाए, हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब जहां सरकार से मिले हैं तो पता नहीं कितना पढ़ते हैं, अल्लाह हमें भी उसका प्रतिष्ठा नसीब फरमा दे। मेरे ख्याल से इस वक्त सारी दुनिया में उससे बड़ा दाई तो कोई है, जो आदमी वजू करते हुए भी दावत देता रहे और खाते हुए भी दावत देता रहे। एक मतलब मैंने हाजी साहब के हाथ में 25 मिनट तक लुकमा देखा है, 25 मिनट इसमें ले लेते, इसमें ले लेते और बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसे जाए मामूली सा खाना है और डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता है, मुश्किल ही ना। काम करते करते अभी परसों करवाए थे, मेरे ऊपर सबसे बड़ा बोझ जो है वो खाने का होता है। चलता हो गया इधर संभाले, काम करते करते चंद मिनट से कचरों की देखो खाने को निपटा दू, ایسا آدمی جس کو دعوت کے علاوہ کوئی چیز ہے یہ بات, وہ بھی اتنی کثرت سے ذکر کرتے ہیں. اور آج کل تو آج تک یہ سارے ثواب بڑوں کو خوب کرتے ہیں, کسی کو اتنی مرتبہ کلو اللہ پڑھ کے, کسی کو اتنی مرتبہ فلاں چیز پڑھ کے, سارے اکابر اور مشائخ ہو. اس سے میرا خیال ہے کہ اپنے اکابر اور مشائخ کو یہ سارے ثواب کرنے سے آدمی کی بھی روحانی ترقی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے بڑوں کا معمول ہے کہ قربانی میں بھی وہ اپنے سارے اکابر اور مشائخ کی طرف سے قربانیاں کرتے ہیں, صحابہ کی طرف سے, ازواج مطہرات کی طرف سے, آئمہ کی طرف سے اور اپنے اکابر کی طرف سے. ایک دفعہ میں نے آج صاحب کی وہ فہرست کی قربانیوں کی, غالباً 43 قربانیاں تھیں. رائے پوری تھی اور خانوی تھی اور اوپر کے صحابہ کی, ازواج مطہرات کی, سبھی بزرگوں کا معمول دیکھا ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو قربانی پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو مال لطف دیتے ہیں, اللہ مال لطف دیتے ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امت کی طرف سے کتنے ووٹ کیے تھے, جتنے ووٹ کیے تھے 100 ووٹ کیے تھے, 100 ووٹ. اور عرب کا سب سے قیمتی چیز ووٹ تھی. یہ کیوں کیے تھے؟ امت کو سکھانے کے لیے. ہمیں ایک بکرا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں. سارے زمانے پہ خرچ کریں گے, قربانی میں جان پھوکتی ہے. وہ بھی دیکھیں گے کہیں اجتماعی قربانی میں 3,000 روپے کا حصہ پڑ جائے تو اچھا ہی ہے. چترال میں یہ قربانی ہوتی ہے 3,000 کی. تو قربانی میں وسعت اختیار کرتا ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ تو یہ ہے کہ جس کو بھی میں نے دیکھا ہے کرتے ہوئے وہ خوب پھلتا پھولتا ہے, خوب پھلتا پھولتا ہے. اللہ پاک نے اس قربانی میں ایسی برکت رکھی کہ اللہ پاک کو ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. جو کہ قربانی کا یہ ہمارا ہے 10-11-12, ان دنوں میں اللہ پاک کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. آدمی ہمت کرے تو اس کا گوشت کے صحیح استعمال میں ضائع نہ کرے. ابھی ہمارے ملک میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جن کی شاید سال بھر بھی گوشت نہ پکتا, سال بھر بھی گوشت نہ پکتا. ایک بچہ ہے جی کراچی کا, میں نے اس سے پوچھا بیٹا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ تو میرا 5,000 روپے ہے. تو میں نے پوچھا بیٹا کیا پکاتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ وہ واپسی میں اس سبزی منڈی کی طرف کہیں کام کرتا ہوں, تو واپسی میں وہ شام کو سبزی سستی مل جاتی ہے ہلکے درجے کی, صبح لے آتا ہوں تو وہ پکا لیتے ہیں, ایک دو دن وہ چل جاتی ہے. میں نے کہا کبھی گوشت پکایا؟ چلے اس کی نوبت ہی نہیں آتی. 5,000 روپے کی تنخواہ والا گوشت کھا سکتا ہے؟ یہ تو میں اس کراچی کی بات کر رہا ہوں. یا ایک ایسا نہیں ہے, ایک ایسا نہیں ہے. ایک साहब से और पूछा पिछले रमजान में, उनकी तनख्वाह भी 5,000, बेटी कुछ घर में कपड़े सी के थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेती है और गरीब आबादी में रहने वालों की मजदूरियां भी हल्की होती हैं, सिलाई भी उसी अखबार से मिलती है। रमजान का महीना था तो मैंने उनसे पूछा आप अफ्तारी में क्या क्या पकता है आपके यहाँ। कहने कोई चीज नहीं पकती। तो मैंने कहा फिर आप अफ्तार किस तरह करते हैं? नमक चाट के अफ्तार कर लेते हैं। मैंने कहा फिर? कहने भी नमाज पढ़ के जो दाल दलिया होता है, कभी चावल कभी दाल रोटी, वो खा लेते हैं और वही हमारा खाना होता है, वही हमारी सहरी होती है इस कराची में। वैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पता नहीं कोई मशहूर था कि कोई चीज ना हो तो नमस्ते चाट लो। मुफ्ती साहब ऐसी कोई चीज शर्म तो नहीं है, इलाके का रिवाज है हिंदुस्तान का। मैंने यूपी वालों में जो बेचारे बिजनों ने नमक चाट के रफ्तार करते थे तो यूपी के थे और एक रिवाजी चीज चली आ रही है। इस कराची में भी ऐसे हैं। कभी ख्याल आया कि ऐसी आबादियों में जाके भी एक गाय जबा कर दें? ढूंढे कौन ये आबादी? हमें तो कमाने से फुर्सत नहीं है, ढूंढे। ये दो वाक्य मैं आपको कराची के सुना रहा हूं, इसके अलावा बीसियों हैं मेरे सामने, ढूंढे कौन उनको। वो तो जो ही चाहे वो चूड़ा आया चाहे चमारा आया चाहे साई आया दरवाजे में, उसको गोश दे के मतम जाते हमने गुरबा को दे दिया। आदमी दुनिया का कोई काम करता है तो उसकी पहले से प्लानिंग करता है कि भाई किससे करवाऊंगा, किस पे खर्च करूंगा। और ये नींद का काम बड़ा है प्लानिंग के, कुर्बानी करने से पहले भी सोचा कि इसकी तकसीम कहां करनी है। जानी दारी बताइए हम इसे कितने सोचते हैं, कुछ है? जाके शराब बोर्ड ले जाते हैं, कहीं ले जाते हैं। इसे के दीन को तो वही मैं कहना रूह की परवाह ही नहीं, रूह की परवाह ही नहीं है। कुर्बानी कर दी और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, मुझे इतना डर लगने लगा है कि कुर्बानी दी एक फैशन और रिवाज में आ गई है। जो हशर हो रहा है मवेशी मंडियों का, अब लोग सैर करने जाते हैं मवेशी मंडी, खरीदने नहीं जाते, देखने जाते। क्या देखने जाते हैं? मैंने पूछा पड़ता हूँ किसी, चले तो वो तो ऐसे सजाते हैं उस जगह को जहाँ मवेशी करते हैं कि जैसे वलीमा हो रहा हो, ऐसी लाइटिंग ऐसे स्टेज और ऐसे वो, और वहां फिर वो जानवर खड़े होते हैं और फिर मुकाबले होते हैं इतने लाख का इतने लाख का, और जो ज्यादा लाख का खरीद कर आता है फिर वो अपने घर में नुमाइश करता है। और खास उसने तय किए हुए कि इतने बजे से इतने बजे तक इसकी नुमाइश होगी। और बकौल कल किसी बच्चे के वो मैनी नाम लेता कि जिन साहब की सबसे महंगी गाय होती है तो वहां इतना मजमा देखने के लिए आता है कि पुलिस का एक इदारा वहां जाके ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ये कुर्बानी है। कभी ऐसी चीजें सुनी नहीं थी। सड़कों पे इश्तहार लगे हुए हैं कि फला फला शोबे वालों की जान लो और उनकी नुमाइश हो रही है। इखलास को तो लपेट के पता नहीं कहां रख लिया। नेकी को छुपा के किया जाता है, दिखा के नहीं किया जाता। तो गले में रस्सी डाल के सारे मोहल्ले को दिखाते हैं कि तुम हमने 5.5 लाख के लिए चाहे। रूह निकलती चली जा रही है। ऐसी कुर्बानी पे क्या मिलेगा अल्लाह पाक के यहां से? تو دنیا والوں جو لکھی تھی دنیا والوں نے بدلا لے لو اس کا. یعنی شان بنتی جا رہی ہے کہ وہ بکرا ہے وہ ایسا بکرا ہے کہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, اتنا اس کو کھلا کے وزنی کیا ہے. اور وہ جب ایک بچے بتا رہا تھا کہ اس کو زبردستی یوں منہ کھول کھول کے کھلاتے ہو, اپنے دوار پہ منہ بھی نہیں کھول سکتا. اور پھر کہتے ہیں اس کے لیے دو گاؤں تکیے بنائے ہوئے, ایک طرف گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے, پھر گاؤں تکیے سے. اب اس کی نمائش ہو رہی. کوئی کام تو اللہ کے لیے چھوڑیں, سب کو دنیا کے لیے. اور یہ دن بدن بڑھ رہا ہے, اور میں اور آپ بڑھا رہے ہیں, وہاں جاتا ہے شروع کرنے میں, اور آپ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. اس کو پکنک پوائنٹ بنا لیا ہے. آخر اب سے 30 سال پہلے قربانیاں ہوتی تھی, نہیں ہوتی لگتی تھی وہ ویسی منڈی ہے کہ دنیا دار کھیت پہ کھڑے ہو جاتے تھے, اب بھی کتنے ہمارے پاکستان کے شہر ایسے ہیں کہ جہاں پورے پوری آبادیوں میں کوئی قربانی کرنے والا نہیں ہے, سکھ استعداد نہیں. ہم ایسے مخلص لوگ تلاش کریں جو وہاں جا کے کر لیں قربانی, یا وہاں کے مخلص تلاش کریں. ورنہ اس نام سے فراڈ بھی بہت چل پڑا ہے. پلا چترال میں 3,000 روپے اجتماعی قربانی کے, پتا چلا کہ وہ شاعر کے پاس گیا. بوجھ اتارنا دین کو بوجھ اتارنا, تلاش کی جستجو کا جذبہ ہی ختم ہو گیا. مستحقین کو تلاش کیا جائے, ایسے بہت اگر لوگ ہیں تو یہ کام کر دیتے. تابانی کے رہنے والے معتبر لوگ ہیں, اگر آپ حضرات مت ہے اور اللہ وہ سب دیے تو خوب قربانیاں کریں, لیکن پھر اس کا استعمال بھی صحیح. 6-6 مہینے میں رکھ کے فریج میں رکھ کے کھانا. ایک آدمی کو تو 6 مہینے سے گوشت نہ ملا ہو, اور ہم 6 مہینے کا گوشت فریزر میں بھر دیں. بات تو بکری سے پہلے جائے تو ادھر خریدتے ہیں. میں تو غلط ناجائز نہیں کہہ رہا, جائز ہے. لیکن خود سوچے آدمی, ایک آدمی کو 6 مہینے سے ایک گوٹی نہیں ملی ہے, اور میں 6 مہینے کا نیا فریزر سے گوشت بھر رہا ہوں اس کے اندر. پلاننگ ہوتی ہے, ایک دن جو ہے وہ بات دیکھو ہوگا, اور ایک دن یہ ہوگا فلانا ہوگا. کھلا کے کھائیں, کھانا کوئی کمال نہیں ہے, کھلا کے کھانا کمال. اور یہ بقرعید تو ہے قربانی, ہے قربانی. کتنا بڑا طبقہ ایسا ہوگا جنہوں نے سالوں سے کلیجی نہیں کھائی ہے, کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جنہوں نے سالوں سے کلیجی نہیں کھائی ہے. کہاں سے خریدیں گے اتنی مہنگی؟ اس لیے بھی درخواست ہے کہ بقرعید کے اوپر اللہ جن کو مقصد دیتا ہے تو قربانیوں کو بڑھائے. مال تو خرچ ہو ہی رہا ہے, ایک شادی کی تقریب سے ایک شادی کے ہال کا کرایہ 2.5 لاکھ. اس طرح بہت برے باہر جو ہیں, 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ کا ہال کا کرایہ ہے, صرف کرایہ ہے. اور ایک دن خالی نہیں ملتا. تو اس پہ کھانے پہ کتنا خرچ ہوتا ہوگا, اور اس کے جہیز پہ اور باقی تقریبات پہ کتنا خرچ ہوتا ہوگا. اور قربانی کے لیے وہی ایک بکرا. اللہ کے لیے جو کرے گا قربانی میں, اللہ پاک نے ایسی برکت رکھی ہے جو جتنی کرے گا مشائخ کے ہم پہ احسانات ہیں, ان کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے, وہ نہ ہوتے تو کہاں سے پہنچ سکتے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ محنت شروع نہیں کرتے تو کہاں بھٹک رہے ہوتے, اور کہاں جھنڈے اٹھائے کر رہے ہوتے زندہ باد اور مرد آباد کے. اللہ نے ایک محنت دی, مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے احسانات ہیں نہیں ہمارے پاس. شہر کی طرف ہم قربانیاں کرنے, ہم تو سب والوں کا تو مسئلہ ہے کہ بھائی مشاہد کے سارے ثواب سے آدمی کی طرف ہی ہوتی ہے, ان کی نسبتیں منتقل ہوتی ہیں. اس لیے ہمارے یہاں معمول ہے کہ ذکر شروع کرنے سے پہلے کم از کم کم از کم تین دفعہ درود شریف, تین دفعہ سورہ اخلاص, ایک دفعہ سورہ فاتحہ, اور آخر میں تین دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنے سلسلے کے مشائخ کو ایصال ثواب. اس سے پہل پہنچے گا, یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, یہ بزرگوں کے تجربے کی چیزیں, ہر چیز کو سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, زیادہ سمجھدار جو ہوتے بڑے مارے جاتے ہیں, وہ سمجھ کے چکر میں ہی رہتے ہیں. میری بھی سمجھ میں آئی, تمہاری سمجھ ہے کتنی بڑی, میرے سمجھ میں نہیں آئی. تبلیغ میں بات کہتے ہیں نا, کوئی ڈرائیور میں بات کہے گی مجھے نہیں اشرا ہو رہا اس کا, ارے تمہارا اشرا ہے کیا, کماتے کماتے تم چلنے کے لیے آیا اور تیرا اشرا نہیں ہو رہا. جنہیں زندگی لگائی ہے ان کو اشرا ہے, انہوں نے شروع کی ہے, پہلا چیز تو مجھے نہیں اشرا ہوتا, کیا تمہارا پن لے گا اشرا ہوگا. گیارہ مہینے دنیا میں گھسے ہے تو چلنے کے لیے آئے, کہتے ہیں کہ اس کے سوئی کا اشارہ نہیں ہوگا. جنہوں نے زندگیاں کھپا دی ان کے اشارہ پہ چلو, آنکھ بند کر کے, آنکھ کھول کے چلنے والے دین میں بہت ٹھوکرے کھاتے ہیں. عقل مند آدمی جو ہوتا ہے بہت مارا جاتا ہے, عقل کے چکر میں رہتا ہے, اور دین میں عقل نہیں نقل چلتی ہے. دین میں جو عقل لڑائے گا اب لوگ بیٹھ جائے گا, اپنے معنی نکالے گا قرآن و حدیث سے. دین میں تو نقل کرنے والا ہی چلتا ہے. اب پیروں کا جوتوں پہ اس پہ موزوں پہ مسا ہے چمڑے کے, تو عقل تو کہتی ہے کہ مسا نیچے کرو گی جو گندگی لگی ہوگی, اور شریعت کیا ہے اوپر کرو, لڑتے ہو عقل سے. دین میں زیادہ عقل مندیاں دکھانا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا. ہم بڑوں کے آدمی اتباع کرے آنکھ بند کر کے, پھر بنے گا منا بھٹکتا رہے گا اور کہیں سے کہیں جا کے گرے گا, کوئی سلفیوں کی گود میں گرے گا, کوئی کسی کی گود میں گرے گا, کوئی کسی کی گود میں گرے گا. عقل چلانے والے یہ نئی نئی تنظیم اور تحریکوں نے ہمارے مجمع کا ذہن پہ بھی اثر ڈالا. اب دیکھیں اگر مفتی صفی عثمانی صاحب سابرکار لکھتے ہیں کہ اسماء بدرین جو ہیں, جو جنہوں نے بدر میں شرکت کی, ان کے نام ہیں, ان کا نام پڑھ کے کوئی دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے, یہ وظیفہ ہے اسماء بدرین کا. اب عقل تو کہیں گی ناموں سے کیا ہوتا ہے, عقل تو یہی کہیں گے ناموں سے کیا ہوتا ہے. یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جن کے ناموں میں جو خیر و برکت ہے, یہ پورا ایک ہمارے تصور وظیفہ ہے اسماء بدرین, ان کے نام پڑھ کے بھی. ایسی جو ہمارا شجرا ہے ہمارے مشائخ کا, یعنی کسی شیخ سے لے کے اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نسبتیں ہیں, کیونکہ یہ سارے سلسلے ایسے ہوائی تھوڑی ہیں, یہ تو پوری پورا شجرا محفوظ ہے کہ کس نے کس کے ہاتھ میں دیا, کس نے کس کے ہاتھ میں دیا, اور وہ ہاتھ پہنچے حضور علیہ السلام تک, چاہے وہ نقش بندی ہو, چاہے وہ پادری ہو, چاہے چوروندی ہو, یا سکھی ہو. ان کا جو شجرا ہے ان کے ناموں کا, یہ تصوف کے اندر کھلی بات ہے, अगर कोई रोजाना इनके नाम पढ़ता रहे तो उसमें कभी जिन्ना और शहर का असर नहीं होगा, नामों का भी असर होता है। अलमारियात सब रहमतुल्लाह के पास एक और आई और रोज और पीते कि मेरी जवान बस्ती पे जिन आ गए हैं, तावीर दे दो, तावीर नहीं देता, मना करते रहे करते रहे करते रहे, वो मानी नहीं। इसने हजरत कुछ कह दे दी कि बेचारी परेशान हो रही, मैंने जाके जाके लिहाज करे चला जाए और गई और जाके बेटी को कहा कि वो लिहाज करे चले जाते हैं, चला गया मैं दोबारा आएगी तो नानी तो लिया था, दम करने तो नहीं गए थे, मारा लिया था आसिम नानुद्दीन अटले ने कागज किसी का है कि एक आदमी इकरार करे जाए कि तावीज दे दें तावीज दे दें तावीज दे दें, सब बीमारी परेशानी नहीं देता, दे दिए कुछ तो कागज पहन फिर मंगाया और लिख के तावीज दे दिए कि गले में डाल देना, वो ठीक हो गया। तो लोगों ने कहा हजरत आप तो दे नहीं रहे, तो उन्होंने तावीज मंगवाओ, तावीज मंगवाया तो कोई भी दिखा चले गए थे, ये अल्लाह मैं जानता नहीं और ये मानता नहीं, ये लिख के दिया था, ये अल्लाह मैं जानता नहीं और ये मानता नहीं। तो अकले तो इन चीजों को तस्लीम करेंगे नहीं, इसलिए अकल वाले मारे जाते हैं। तो ज्यादा अकलमंद हो ना वक्त होकर खाता है, दीन में तो नकल है, इसलिए सारा दीन किताबों के जरिए नहीं आया, कुछ तीन और सीना में मुंतकिल हुआ है और सीना पसीना जो मुंतकिल होता है ना वो बड़ा जामे होता है। अब किताबों पे जोर है, किताबों पे जोर है, किताब लिखने वाला है कौन ये पता नहीं है, तो उसने कितने खूबसूरत अल्फाज बनाए हों, कितने खूबसूरत मजमून बनाया हो, लेकिन उसकी तो कैफियत तो उसके अंदर मुंतकिल होगी ना, उसकी अपनी नस्बत उसके अंदर मुंतकिल होगी। ऐसी सीना पसीना जो चीजें मुंतकिल होती हैं तो वो उनकी नस्बत से मुंतकिल होती है, ये तहनीक क्यों रखती है बच्चों को, जब बच्चा पैदा हो तो किसी नेक और साले अल्लाह वाले से खजूर चबा के चटवाई जाए, डॉक्टर तो बिल को फर्ते लगा देंगे बैक्टीरिया और ये और वो जरासीम, उस अल्लाह वाले की नस्बत मुंतकिल होती है, अब नस्बत समझ में आए कैसे। इसलिए मेरे भाई अपनी अकल को किसी के ताबे कर दें, अपनी अकल को किसी के ताबे कर दें, अल्लाह पाक सही रुख पे डाल देंगे, वरना आदमी के डगमगाने का हर वक्त खतरा है, हर वक्त खतरा है। बड़े बड़े अहलुल्ला जो है ना वो भी तो हमारे यहाँ इल्म के अखबार से चोटी पे जो है वो मुफ्ती तफी उस्मानी साहब की चोटी, बाकी इन चीजों में तलाब हो तो उम्मत में होते ही है, उसमें फायदे नहीं, लेकिन इल्म के समंदर इस मुकाम पे भी पहुंच के वो कहते हैं हम अपने आप को किसी का ताबे रख के चलना चाहते हैं। मुझे उस दिन दारुल के किसी ने बताया कि पहले तो ताल्लुक था डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह से, उनसे बैठ के अब कहते हैं कि हम बगैर किसी बजुर्ग के चल नहीं सकते, तो नवाब फैसल साहब दामद कादर में उनके साथ उन्होंने अपना ताल्लुक जोड़ा, अभी थाने सिलसिले के अगर इनके अखबार से ना होगे तो ना डॉक्टर अब्दुल हई साहब आ लिखते हैं ना नवाब फैसल साहब आ लिखते, लेकिन ऐसे नस्बत हैं दोनों, ऐसे नस्बत हैं बाद ये धोखा मारता है ना कि कोई आलिम और अच्छी बात है, और अच्छी बात है, लेकिन ना मेरे तो क्या करें। बगैर उस्ताद के कोई चल नहीं सकता, कोई दुनिया में भी तजुर्बा ही है, दुनियावी जितनी चीजें हैं ना, उसमें अगर किसी को उस्ताद ना हो तो उस लाइन के माहिरीन उसको नहीं मानते। म्यूजिक एक नाजायज चीज है, इसमें भी उस्ताद होते हैं, महीनों रात सिखाते रहते हैं, उसके बाद फिर एक गाने पर डालते हैं। तो एक जमाना था कोई हमसे 30-35 साल पहले, पाकिस्तान में एक म्यूजिक डायरेक्टर बहुत मशहूर हुए, बहुत मशहूर है, शोहरत उनकी बहुत थी। उस दौर के जो म्यूजिक के उस्ताद कहलाते थे, पता नहीं कौन कौन से बड़े, तो वो उनको मानते नहीं थे। तो किसी ने पूछा कि आप क्यों नहीं मानते, सारे कोई में इतना डंका, कहने सब कोई ठीक है, देखो बे उस्तादा है, उस्ताद कोई नहीं है, खुद ही ठीक है, उस्तादा है। तो ऐसी मासियत की चीजों में भी उस्तादों की जरूरत पड़ती है, तो दीन में बगैर उस्ताद के आदमी कैसे चल सकता है। इसलिए आदमी किसी का हाथ पकड़ ले, अकेला चल नहीं सकता। एक 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 इस रास्ते में एक बहुत बड़ा धोखा ये लगता है कि किसी से आदमी का ताल्लुक हो गया, बहुत अच्छा लोग हो गया, तो उसको ये जरूर होता है कि मैं इन मुरीदों से ज्यादा मान के चलता हूँ। एक पुरानी बात है, एक नौजवान था, उसने किसी ने कहा कि बैठो जाओ, तो कह रहा तुमसे ज्यादा पूछ के तो मैं चलता हूँ, मान के मैं चलता हूँ। वैसे कहते लेकिन जिसने किसी का आशा पकड़ा हो ना, तो पूछेगा इससे कहीं और आसान रास्ता मिलेगा तो वहां पूछेगा, फिर वहां पूछेगा और थाली का बैगन बना रहता है। जहां आसान जवाब मिल जाए वहां मशवरा कर लो, और जो एक का हो जाता है, जैसे आसान जवाब मिले चाहे मुझे सब माननी है, फिर बनता है आदमी। दस जगह मशवरा करने वाला दौड़ता रहेगा। राय तो मुख्तलिफ हुआ ही करती है, दुनियावी उसमें भी है कि मैथमेटिक्स पढ़ना है, एक टीचर से पढ़ लो निकल जाओ, अगर दस के पास गए ना तो कंफ्यूज हो। क्योंकि दस उस्तादों का भी मकसूद तो उसके इम्तहान पास कराना है, लेकिन उनके तरीके अलग अलग है सिखाने के। आज उसमें बिल्कुल परेशान हो जाता है, और एक से सीख के चलेगा, एक से पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। ऐसे दीन में ये एक बात है, सारे से पूछी, दूसरे से पूछी, फिर एक चौथे से पूछी, भगवान इधर उधर ही प्रकार है, और आखिर में फिर बन जाता है। मैं इसलिए रहस्य के रूप को मजबूत बनाने पर जोर दें, यह रूप जोक की तरफ चलती चली जा रही है, और अपने को कहीं बांध लें, जब ऐसा बांधें कि चले नहीं सकते, जो कह दें वो करें, तब तो फायदा है, वरना तो ठीक है, बरकत वाला बदना होगा, तरबियत वाला बदना तो नहीं होगा। एक बदना होता है बरकत का, एक होता है तरबियत, दो होते हैं बदने। अगर बरकत के लिए बनना है तो ठीक है, बैस की बरकत मिल जाएगी, लेकिन बनेगा नहीं यार, बनने में तो चाहे ना चाहे जो कह रहे हो करना होगा। क्योंकि बात चीजें ऐसी भी शेख को करानी पड़ती हैं जो जाहिर के खिलाफ होती है और उसके समझ में नहीं आती, मान ले तो बन जाता है। ज्यादा हो गया, तो इसलिए मेरे भाइयों जरा थोड़ा सा इस रूप की तरफ तवज्जो दें, वरना आदमी का खतरा है, खतरा है, और इसमें चारों तरफ से रूप को कमजोर करने की बनी हुई है चारों तरफ, और दीनदारों पे हमला ज्यादा हो रहा है, दीनदारों पे हमला ज्यादा हो रहा है। इंशाल्लाह तो कल से बात करूंगा कि दीनदारों पे हमले किस तरह हो रहे हैं। अल्लाह हम सबको अपनी और अपनी तबीयत की तरफ ध्यान देने की तौफीक अता फरमा दे, और इसके लिए सबसे बेहतरीन काम तो ये तबीयत का है। इतने आंख बंद करके अपने अमीर के सुपुर्द होके चलो, आदमी चिल्ले में निकल जाएगा। रायवेन के आठ दिन पर बैठा आदमी को हुजूर समझ के बात कर लो, आदमी बन जाएगा। अनोखा की नहीं की कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि चिल्ला और चित्राल वाले जो है ना, ये बड़े मजे में, बड़े मजे में। रायगढ़ से बैठे मेंबर पे जा रहा आदमी को बुजुर्ग समझते हैं और उसकी बात को सुनते अमल करके आते हैं। और हमारे जैसे जो है ना, वो पहले तो मंच में झांक के देखते हैं कि बयान कौन कर रहा है। मेरे मर्जी का बयान हो रहा है तो बैठूंगा, ऑर्डर है कमरे में चला जाऊंगा। और तो ये सोचते रहते कि इसके बाद मसला रहे चीज चल रही है, तो जो जो पल्ले लेके जाते हैं वो भी चाड़ के आ जाते हैं। चतराल उल्लास और ये जो ऊपर के लोग आते हैं, इससे वली होते हैं और आराम भी उनको समझते हैं। इसलिए जब चिल्ले से वापस जाते हैं तो झोलियां भर के लेके जाते हैं। हम जैसे ऐतराजी तो पल्ले वो भी जाड़ जाते हैं। रायवड़ की चार दिवाली का कदम रखें तो अपने आप को खाली कर दें, अपने आप को खाली कर दें। और वहां भी मशवरा करना है तो शूरा से कहें, अपना पॉकेट बन जाएंगे। जिसका जिस बुजुर्ग से ताल्लुक होगा उनसे मशवरा करेगा, उसको मशवरा नहीं कहते, उसको राय कहते। मशवरा करना है तो शूरा में मशवरा करें। एक दफा में एक जमात यहाँ की निकली थी एक अस्पताल में, पहली मरतबा मर्दों का ज्यादा अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के साथ मर्दों के साथ था, औरतें होती हूँ। उन्होंने एक स्टाफ में कोशिश करके मेहनत की और मर्दों को रखा और मुसलमान रखे, दोनों मजे क्रिश्चियन होते। उनकी पहली जमात निकली तो लॉर्ड से चीफ मैंने आयिशा से सुबह कहा, फिर टेंशन से मुस्तक कर रहा हूँ, मैंने मशवरे में 9 बजे मशवरा होगा शूरा में होगा। तो समय आपने कोवत को तो इस समय की हल किया करो, उसी जवाब दिया जाओ। अरे मेरा इतना ताल्लुक कह सकते मेरे मशवरे में 9 बजे जो मशवरा होता है, मशवरी भी करना है तो शूरा मैंने वहां के पॉकेट बन जाएंगे। जिसके जिससे पहले वो सब मशवरा करके निकलेगा, कहते मैंने तो रायगढ़ में पूछ लिया। अल्लाह हम सबकी तबीयत करना है। اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بہتر والے اندر کونے میں تشریف